महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 12। ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 44 पर हम आ गए थे, 44। यहाँ अंतर प्ररूपणा प्रारंभ होती है। तो अंतर का अर्थ क्या है कि उत्कृष्ट हो या जघन्य, अभी हम पहले उत्कृष्ट की बात करेंगे, एक जीव की अपेक्षा बात है। अंतर का अर्थ होता है किसी ने उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया और फिर नहीं किया, या तो अनुत्कृष्ट किया या बंध ही नहीं किया और फिर वापस लौट कर आया और उत्कृष्ट किया, तो उसका अंतर कितना हो सकता है। तो पहले हमको स्वामित्व को सोचना है कि चार घाती का उत्कृष्ट कौन करता है, तो संगी पंचमी मिथ्या दृष्टि संग वगैरह वगैरह वगैरह, वो उत्कृष्ट करेगा। एक समय अनुत्कृष्ट करके फिर उत्कृष्ट कर सकता है, तो एक समय का अंतर हो सकता है। और अधिक से अधिक अंतर कब होगा, तो कहते कि अनंत काल, एक इंद्रिय आदि में चला जाएगा तो उत्कृष्ट करेगा ही नहीं, तो वो अनंत काल हो जाता है। इस तरह से उसको हमने देखा था के देखो फिर से देखते 44 पेज पर, पहले उत्कृष्ट का है ना, चार घाती कर्मों के सेकंड लाइन, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कितना अंतर है, जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण। अब अनुत्कृष्ट का अंतर, अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा, जब उत्कृष्ट कर रहा है या जब बंध ही नहीं कर रहा है। तो अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय के लिए उसने उत्कृष्ट किया फिर अनुत्कृष्ट किया, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय हुआ। और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है, क्योंकि अगर उत्कृष्ट करता है तो एक या दो समय,
अनंत नहीं लेते थे, पूरा
काल अनंत है,
काल अनंत
अंतर। वो एक इंद्रियादि अनुत्कृष्ट ही कर रहे हैं, तो वो अनुत्कृष्ट बंद ही नहीं करेंगे कब होगा, या तो उत्कृष्ट करेगा तब या बंद ही नहीं करेगा तब। इसलिए अनुत्कृष्ट का अंतर मिनिमम एक समय, मैक्सिमम अंतर मोड 11वें गुणस्थान की अपेक्षा देखना है। अब देखो वेदनीय नाम और गोत्र की बात, उसका उत्कृष्ट अनुभाग कब होता है, शपक के अंतिम समय में सूक्ष्म सांप्रदाय। तो अनादि से तो अजगर नहीं था, सॉरी अनुत्कृष्ट ही था, अनुत्कृष्ट ही था। तो उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट केवल एक समय के लिए होता है, वो तो क्षपक के अंतिम समय में, फिर दोबारा उत्कृष्ट होने का सवाल नहीं है। इसलिए उत्कृष्ट का अंतर नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर नहीं है। अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे हो सकता है,
तो
11वें में गया और एक समय में मरा तो ही, यानी बीच में दो उत्कृष्ट के बीच में होता है, वैसा यहाँ नहीं लेना है। 11वें गुणस्थान में गया, एक समय में मरण हुआ, एक समय के लिए बंध नहीं था, मर कर देह हुआ तो बंध शुरू हुआ, तो अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय हुआ। पूरी श्रेणी चढ़ के उतरा, दशम में आते ही बंध शुरू हुआ, वो अनुत्कृष्ट ही था, तो वो होता है अंतर्मुख। हाँ, क्योंकि वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कब होता है, शपक 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में, एक समय के लिए, तभी उसका कायम के लिए वो 12वें में चला जाएगा, लौट कर अभी फिर दोबारा उत्कृष्ट होने का सवाल नहीं है। वो तीनों के लिए, वेदनीय नाम गोत्र तीनों के लिए ऐसा ही। उसका कारण क्या है, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में उत्कृष्ट होता है अंतिम समय में। अब आयु की बात है, स्थिति बंध का मैंने ये बोला था कि स्थिति बंध के साथ कंपैरिजन की थी हमने, कि स्थिति बंध का, स्थिति बंध में हमेशा आबाधा सहित उत्कृष्ट स्थिति बंध लेते हैं, तो आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध जो है तो देवायु का हम सोच रहे थे। वैसे केवल आयु कहने से उत्कृष्ट स्थिति बंध नरकायु भी हो सकती है, देवायु भी हो सकती है, तो नरकायु के लिए तो अनंत काल अंतर पड़ेगा। कैसे, एक बार बांधी फिर वहां तो गया, फिर वहां से निकला, अन्य अन्य पर्याय में घूमा, एक इंद्रिय में गया, फिर तैतीस सागर की बांधी नहीं, तब तक उसका अंतर ही कहलाएगा। अब हम देवायु के बारे में सोचेंगे, देवायु जो तैतीस सागर का बांधेगा तो तैतीस सागर के बाद आकर मोक्ष चला जाएगा, इसलिए उसका अंतर नहीं होगा। पर हमको अंतर घटित करना है स्थिति बंध का, तो उत्कृष्ट स्थिति उसने उत्कृष्ट आबादा के साथ उत्कृष्ट स्थिति बांधी। आबादा कितनी, वंथर पूर्व कोटि, और स्थिति बांधी 33 सागर की देवायु की। अब उसको दोबारा अंतर करने के लिए दोबारा ऐसा ही बांधना है तो मिनिमम अंतर कितना होगा, तो 33 सागर आयु तो बांधी, फिर उसी भूमि में उसने घाता इश्क किया, तो कितनी रखी उसने, तो 10,000 वर्ष। तो ये वंथर पूर्वकोटि के बाद ही मरेगा, क्योंकि आबादा तो नक्की हो गई, भले घातायुष्क हुआ तो आबादा कुछ कट डाउन नहीं होगी उसकी। तो यानी ये वंथर पूर्वकोटि के बाद उसने 10,000 वर्ष की देवायु भोगी, वो देव ने फिर पूर्वकोटि के मनुष्यायु बांधी, और वो पूर्वकोटि वाले ने 2/3 पूर्वकोटि बीत जाने पर फिर 33 सागर आयु बांधी। यानी वो आयु बांधने का एक समय कम करना ना, यानी एक पूर्व कोटि माइनस एक समय पहले और नेक्स्ट भव में मनुष्य के।
नहीं, वो 10,000 वर्ष की बांधी, वहाँ पे गया वापस मनुष्य आयु
पूर्व कोटि बांधी, और 2/3 पूर्व कोटि के बाद उसने आयु बांधी 33 सागर वाली। तो 33 सागर का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध किया उत्कृष्ट आबादा के साथ, उसका मिनिमम अंतर यानी जघन्य अंतर कितना हुआ, तो एक पूर्व कोटि माइनस एक समय प्लस 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष देव, देव की आयु 10,000 वर्ष की, और ये वंथर पूर्व कोटि और तूथर पूर्व कोटि मिलकर एक पूर्व कोटि हुई, और एक समय तो आयु बंध का पहला समय माइनस करना है। स्थिति बंध की अपेक्षा अनुभाग बंध तो कभी भी हो सकता है, यानी अंतर्मूर्त में कभी भी उसका उत्कृष्ट हो सकता है। तो यहाँ
हम लोग भी जब स्थिति की अपेक्षा घाटा लिखते 10,000 वर्ष की आयु कर दी, वो जीव मिथ्यात्व में जाएगा पीछे घात करेगा।
हाँ, मिथ्यात्व में जाके घात करेगा,
और पीछे
मिथ्यात्व में गया और संक्लेश परिणाम हुआ, इसलिए तो इतना घात हुआ। सम्यक्त्व में रहते हुए वो 10,000 वर्ष का कैसा करेगा, साधिक पल्ले भी नहीं कहेंगे उसको, साधिक 2000 सागर वगैरह ऐसा हो जाता है नीचे के देवों के लिए, साधिक पल्ले भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको तो पीतलेशा वालों के उत्कृष्ट आयु घातायुष्क की अपेक्षा साधिक 2000 सागर का, साधिक में वहाँ आधा सागर माइनस अंतर्मूर्ति इतना अधिक हो सकता है, परंतु 10,000 वर्ष तक के कोई भी विकल्प हो सकते हैं उसी। ये तो मिथ्यात्व में गया है और इस संक्लेश परिणाम ही हुआ है, इसीलिए तो आयु का घात हुआ है।
तो हम लोग आयु में उत्कृष्ट तो
नारकी का उसी का उत्कृष्ट होगा
तो
ना, 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 ये तो हमने स्थिति की बात कैसे घटित करना है, 33 सागर के देवायु की बात यहाँ, हाँ इसमें लागू नहीं होता है। इसमें आयु में चारों आयु में उत्कृष्ट देवायु का होता है, तो देवायु का जघन्य अंतर कितना होगा, एक समय। आयु बंध के काल में एक समय के लिए उत्कृष्ट किया, फिर अनुत्कृष्ट किया, फिर उत्कृष्ट किया, और अधिक से अधिक अंतर कितना होता, तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन का, यही वहां पर भी उसको घात तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो 33 सागर के आयु में उसका उत्कृष्ट बंध किया है, फिर उसने जो कुछ घातायुष्क किया और फिर मिथ्यात्व में घूमा, फिर अंत में फिर 33 सागर की आयु बांधी, तो कुछ कम में जितने 33 सागर और कुछ मनुष्य आयु का इतना काल अर्धपुद्गल में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई ना भाई, इसने अर्धपुद्गल दिया। हाँ तो आप माइक में पूछेंगे। हाँ हाँ आप उसमें बोलिए ना माइक में। हाँ नहीं जरूरत। हाँ बोलिए। अशुभ तेजस निकाला। हाँ हाँ फिर घाता इश्क हुआ, मिथ्या तो में गया घाता इश्क हुआ। परोसो किसी ने प्रश्न पूछा था ना, कौन से गुण स्थान में वो अशुभ तेजस समुद्घात, तो छठे में ही होता है, शुभ हो या अशुभ हो। वो निकला तभी तो उनका छठा गुण स्थान था, अब ऐसे परिणाम हुए कि मिथ्या तो में चले गए, अनंतानुबंधी इतना हुआ है। हाँ वही
तो
समय
छोटा काल रहता है उसका, वो वापस वो जला के वापस
वो छोटा अंतर में होता है।
आयु भी बांधी, मिथ्या में भी गए,
आयु तो ऑलरेडी बांधी थी पहले, घाता है घात किया ना, घात करने के लिए दोबारा आयु बांधने की जरूरत नहीं
नहीं है।
नहीं आयु अगर बढ़कर बांधती है तो ही दोबारा आयु बंध का सवाल है, घात कभी भी हो सकता है। बंधी हुई अभी आयु बंधी है, आवाना निश्चित हुए, किसी भी समय उसका घात हो सकता है। आगामी आयु का घात उर्वरित आबादा काल में कभी भी हो सकता है। अगर बढ़कर आयु बांधी है, किसी ने मान लेते हैं ना सागर की बांधी है और फिर उसके परिणाम समय दर्शन भी हुआ, परिणाम सुधर गया, तो उसको 10 सागर की बांधेगा, तो वहाँ उसको सेकंड टाइम आयु बांधने का सवाल है। उत्कर्षण हुआ ना, और यहाँ केवल अपकर्षण नहीं हुआ, पूरा घात ही हुआ है, तो घात के लिए तो आबादा के काल में कभी भी घात हो सकता है, बंधी हुई आयु का। और वर्तमान जो गुज्जमान आयु का घात होता है उसको कदली घात कहते हैं, वो अलग है, और घातायुष्क वाला जो घात है वो बंधी हुई आयु का घात हो जाता है।
तो उसमें तो शुक्ल लेशा में बांधी होगी, जो 33 सागर की बांधी होगी।
बिल्कुल शुक्ल लेशा में, बिल्कुल
अशुभ लेशा में जाएंगे फिर।
हाँ वहाँ उत्पन्न तो अशुभ लेशा में ही हो जाते हैं।
तो ये जो शुभ जो निकला
अशुभ तेजस निकला, हाँ
वो तो छठे गुणस्थान में निकला,
छठे गुणस्थान में
उनका मरण भी वहाँ पे हुआ, क्योंकि वो ही उसका घात करता है।
घात करता मरण मिथ्या तो में हुआ ना,
तो जब तेजस शरीर निकला,
शरीर निकला फिर आया उसको जलाया, वो सब बातें होती है ना।
अच्छा शरीर आने के पश्चात वो जलने से उत्पन्न,
अभी आने के पश्चात मिथ्या तो में गया कि उसी समय गया वो, परंतु वो तेजस वाली जो थी रुद्धि वो छठे गुणस्थान वाले की थी।
तो वहाँ पे जाके वापस
सम्यक
तो प्राप्त
कर सकते हैं ना, भवनत्रिक में कोई भी जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक वो जीव कितने घूमेगा तो अर्धपुद्गल, पता नहीं उसके पहले भी कभी किसी भव में उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया, उस पर्टिकुलर जीव की बात है।
इसमें तो
वो तो संयमी थे, बिना संयमी के तो तेजस का तो वृद्धि नहीं होती उनकी। हाँ वो उसी समय ना एकदम ऐसा गुस्सा आया कि वो तेजस निकला। बिल्कुल संज्वलन था, तीव्र हुए। हाँ तीव्र हुए, पर अभी जैसे हम कहते हैं मिथ्या तो के सन्मुख हुआ है, वो सन्मुख हुआ है, परंतु अभी अंतर्मूर्त वाला सन्मुख परिणाम है। जैसे हमने यहाँ पर स्थिति अनुभाग बंध अंतिम समय में देखते हैं, जैसे करण लब्धि में उत्कृष्ट अंतिम समय में देखते हैं, जैसे मिथ्या तो के सन्मुख वाला जीव है वो अंतर्मूर्त काल उसका छठे का है, और अभी वो नियम से मिथ्या तो में जाने वाला है, यानी परिणाम कितना बिल्कुल तीव्र 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 हो रहा है, तो उस अंतर्मूर्त में उसके अशुभ भी निकला, फिर वापस आया जलाया और ये मिथ्या तो में चले गए। इस तरह से हम सोच यानी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ आपका पेज नंबर 8 का है। हाँ स्वामित्व में देख लेते हैं, 8 नंबर के पेज पर। हाँ तिर्यंचो में था। हाँ तत्प्राय जो संकुल नहीं, नरकायु बांधी उसने, नरकायु का उसको उत्कृष्ट है। तिर्यंचो में उत्कृष्ट कौन बांधेगा, तो नरकायु का उत्कृष्ट। विशुद्ध इसलिए कि वहाँ देवायु उत्कृष्ट थी। ओग में उत्कृष्ट कौन सी देखो, जहाँ देवायु भी 33 सागर की और नरकायु भी 33 सागर की, तो उसमें कंपैरिजन अनुभाग की अपेक्षा देवायु का अनुभाग ज्यादा है, अनंत गुना ज्यादा है। तो वहाँ देव मध्यम परिणाम में नहीं, यानी अति उत्कृष्ट में नहीं बनते, तब प्राग में बनते।
हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था कि नरकायु बांधने का तो नहीं स्वतीय ज्यादा होगा, नरकायु बांधने का ना
वो नरकायु बांधेगा, परंतु तत्प्रायग संकलेश क्यों लिखा? तत्प्रायग के उत्कृष्ट संकलेश में आयु नहीं बनती, इसलिए नरकायु के लिए या किसी भी आयु के लिए तत्प्रायग शब्द लगाते। सभी में अपर्याप्त में विशुद्धि में क्यों? क्योंकि वहाँ मनुष्य और तिर्यंचायु दो ही बांधते, तो तिर्यंचायु से मनुष्यायु अनंत गुणा अनुभाग वाली ज्यादा है, तो उसकी लेना, इसलिए उसको विशुद्धि में लेना। कौन सी आयु है? आयु इन जनरल की बात, क्योंकि यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही
है।
तिर्यंच देवायु बांधे तो कितने बांधेंगे? 22 सागर के, 16वें स्वर्ग तक की,
तो 22 सागर की जो अनुपात है
उससे 33 सागर वाला
अनुपात ज्यादा है, वो घटित हो जाता है,
क्योंकि वो अनुभाग में आएंगे जो अल्प बहुत है ना, उसमें बात आएगी। सामान्य से ओग में अनुभाग अगर देखना है
देवायु का उत्कृष्ट,
तो उसमें तिर्यंचायु से मनुष्यायु, मनुष्यायु से देवायु, इस तरह से देखते हैं। देवायु का मैक्सिमम लिया था, वो तीनों आयु कैसे शुभ परिणाम? हाँ, यहाँ संकलेश ही लेना, क्योंकि नरकायु का वो उत्कृष्ट कर रहा है। तिर्यंचो में देवायु की अपेक्षा नरकायु का अनुभाग ज्यादा है, उत्कृष्ट अनुभाग। हाँ, 33 सागर के नरकायु बांध रहा है, तिर्यंच बांधता है, तो उसका अनुभाग और 22 सागर के देवायु का अनुभाग उसमें कंपेयर करेंगे तो नरकायु का अनुभाग ज्यादा है। इसलिए इनमें आयु उन्होंने तो आयु की बात की बस इतनी, पर संकलेश लिखा है नरकायु होनी चाहिए, तो नरकायु तो हम सिद्धि की अपेक्षा सोचेंगे, ये हमने सोचा है, अति संकलेश में है ना, तो उसके अनुभाग भी ज्यादा बन देगा नरकायु का, यानी कहाँ प्रशस्त प्रकृति ना मध्यम नहीं को मध्यम, वो तो जघन्य के लिए मध्यम परिणाम कहेंगे, या उत्कृष्ट के लिए तत्प्रायोग्य विशुद्ध या तत्प्रायोग्य संकलेश है, समझा?
मध्यम परिणाम
हमने हमेशा देखा था ना स्वामित्व में जघन्य आयु बंधन। देखो आप अभी जगन्य, ये आप उत्कृष्ट की बात करें ना, आप जगन्य की बात देख लो, उसके आगे थोड़े पेज जाने दो ना,
जगन्य पर्याप्ति से पर्याप्त कर लिया था
ना, जगन्य स्वामित्व में वो पर्याप्ति से पर्याप्त वगैरह वो तो छोड़ दो, परंतु
जगन्य पर्याप्ति से
17 से शुरू हुआ है, पर आयु की बात 18 पेज पर है, वो सर्वत्र वहाँ मध्यम परिणाम वाला लिया है, और अभी हमने यहाँ पर तत्प्रायोग विशुद्धि या तत्प्रायोग संकलेश देखा, जगन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान, क्योंकि वो लब्धि अपर्याप्त जीव है, और जो पर्याप्त जीव होते हैं उनके जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान कहते हैं। अब आपने जो अपने तिर्यंचों का प्रश्न पूछा था, अभी यहाँ तिर्यंचों में ही देखो जगन्य के लिए, पेज नंबर 19 पर, 19 पर होगा, एक मिनट,
मध्यम परिणाम
नाम का गोत्र वेदनी आयु और नाम कर्म का भंग ओग के समान, ओग के समान में हमने किसको लिया था? तिर्यंचायु को लिया था, यहाँ पर भी जघन्य में तिर्यंचायु बांधेगा, उत्कृष्ट में नरकायु का बंद कर रहा था, जगन्य में तिर्यंचायु को लेगा, क्योंकि वो लब्धि पर्याप्त की तिर्यंचायु बांध रहा है, मनुष्य की भी उतनी होगी तिर्यंच की भी उतनी होगी, पर प्रकृति में डिफरेंस है ना, तिर्यंचायु थोड़े संकलेश में बन जाएगी, मनुष्यायु अधिक विशुद्धि में बढ़ेगी, थोड़ी अधिक विशुद्धि में बनेगी ना, दोनों ही शुभ प्रकृतियां हैं, परंतु उसमें अनुभाग की अपेक्षा डिफरेंस है, तिर्यंचायु से मनुष्यायु का अनुभाग अनंत गुणा होगा, तिर्यंचायु बांध रहा जगन्य में तिर्यंचायु, इसलिए ओग के समान लिया।
का अनुभव और स्थिति में थोड़ा तो कुछ प्रपोर्शन रहता है,
थोड़ा है हाँ। सर्वथा नहीं लेना,
सर्वथा नहीं लेना,
क्योंकि स्थिति में भी उसके आबादा सहित हमको काउंट करना पड़ता है, अनुभव में वो कंडीशन नहीं है। आबादा कौन कितने आबादा सहित बांध रहा है उसके बाद कुछ वहाँ नहीं लागू होती। और स्थिति में क्या, पहले समय में जो स्थिति बंधी एक एक समय से घटती चली जाती है क्योंकि आबादा कम हो रही है। अनुभव कहीं पर भी जगन्य कहीं पर भी उत्कृष्ट हो सकता है।
तो जिसने दोबारा आयु बांधी उसकी आबादा वो पहले की रहेगी,
वो वही आबादा रहेगी क्योंकि आबादा नक्की हो गई अभी। आबादा नक्की हो गई है पहली बार, अभी दूसरी बार बांधता है तो क्या विशेषता होती है उसकी आबादा जितनी रिमेनिंग है उसी की लाइन, वो तो ऑलरेडी काउंट कर ही दिया। जैसे पहले किसी ने 90 साल के जीवन 30 साल पहले आयु बांधी और फिर दोबारा बांधी तो उसके 10 साल बाकी थे तो उसकी आबादा अभी कितनी है 10 साल, और जो 30 साल पहले बांधी थी उसकी भी उतनी बाकी रही ना, भी उसके तो 20 साल बीत गए उसके भी 10 साल बाकी और अभी भी बांधेगा तो 10 साल ही आबादा है। क्या पता आठवें उपकर्ष तक कभी भी बन सकती है, और आपकी कितनी आयु बांध के आप आए पता नहीं है ना।
अभी तो कौन 70 से ज्यादा जीता
सोचो मत।
अरे जो जो है ना कि वो है उसमें क्या है। यानी ऐसा समझो ना 50 साल के हो गया यानी आयु बांधने का चांस हो गया है, पता नहीं 90 साल के भी आयु बांध के आए हो आपके नहीं कहने से क्या होता है
कुछ नहीं, और क्या अच्छा क्या बुरा क्या सुनना ही दिए
उसमें फर्क तो कुछ नहीं है, है ना। आयु से यहाँ तो जो ना या अन्यत्र जीना, यहाँ तो स्वाध्याय तो अच्छा है ना, चलो हाँ तो यहाँ जल्दी मरने की भी नंबर सोचो ज्यादा जीऊंगा ये भी, उसके कोई विकल्प की जरूरत ही नहीं है, है वो निश्चित है। हमें तो सोचना है कि जितने कुछ है तो हम उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर करेंगे। अभी अपने पेज पर आना, 44 पर थे हम। देखो अभी हमने आयु की बात देखी, यहाँ उत्कृष्ट में हमने देवायु को लिया था क्योंकि इससे हमको, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन बताइए ना, अर्धपुद्गल अर्थात वो देवायु की बात होनी चाहिए जो समय दृष्टि बांधता है देवायु का उत्कृष्ट। नरकायु के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन कहेंगे, और ओघ में जब हमने देखा था उत्कृष्ट आयु में देवायु को ही दिया था। नरकायु के लिए तो अभी वो तो उत्तर प्रकृति में बात आएगी, अलग एक एक आयु की बात अलग से आएगी, पर यहाँ आयु इन जनरल में यहाँ कौन सी आयु ली है ये हमको सोचना था। ये अर्धपुद्गल परावर्तन से क्या नक्की होता है कि समय दृष्टि ने तो आयु बांधी है। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का आयु के हाँ जघन्य अंतर एक समय, यानी जब आयु बांध रही है दो उत्कृष्ट के बीच में एक समय हो सकता है, या उत्कृष्ट बांधी और एक समय के लिए वो बंद कर रुक गई तब भी एक समय हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है, किसका, अनुत्कृष्ट का। अनुत्कृष्ट में जैसे उत्कृष्ट उसने बंद किया पहले समय में 33 सागर की बांधी, फिर रिमेनिंग अंतर मुहूर्त के लिए अनुत्कृष्ट बांधी, यह अनुत्कृष्ट का अंतर हो गया, और फिर यहाँ वंथर पूर्व कोटि मनुष्यायु होगी 33 सागर में देवायु, फिर उसने मनुष्यायु बांधी वह अनुत्कृष्ट ही कहलाएगी ना। यहाँ आयु इन जनरल बात चल रही है, देवायु का अंतर नहीं देख रहे, आयु इन जनरल का अंतर देख रहे, तो यहाँ के वंथर पूर्व कोटि और वहाँ के 33 सागर कुछ यानी दोनों और एक अंतर्मूर्त कम करना, हाँ लास्ट में बांधेगा अंतर्मूर्त वहाँ कम करना, और यहाँ पर भी वन थर्ड पूर्व कोटि का अंतर्मूर्त चला गया। इस प्रकार ओघ के समान अचक्षु दर्शनी और भव्य जीवों के जानना चाहिए। भव्य क्यों, क्योंकि वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन की ये सब बातें घटित हो जाती है इसमें। ये हमने अभी ओघ से देखा, इसी का विशेषार्थ कल हमने जो पढ़ा था ना ये पैराग्राफ हमने पढ़ा था। हाँ, विशेषार्थ को अब चालू करेंगे। चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध जिन परिणामों के प्राप्त होने पर होता है वे एक समय के बाद पुनः प्राप्त हो सकते हैं। स्थितिबंध में तो हमको अंतर्मुहूर्त के बाद दोबारा उतना स्थितिबंध हो सकता था, यहाँ वो बात नहीं, एक समय के अंतर से हो सकते हैं। और असंगी तक के जीवों की एक इंद्रिय से, एक्चुअली असंगी कहने से एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय सब आ गए, केवल असंगी जीवों की कहते तो भी चल जाता है। उत्कृष्ट काय स्थिति अनंत काल प्रमाण है, यानी जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, यानी वो तक्के नहीं लिखते तो भी चल जाता। अभी तक्के लिखा है तो असंगी पंचेंद्रिय तक्के लिखना चाहिए था। हाँ, इतने काल के भीतर इन कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं होता, क्योंकि उसका स्वामी कौन है तो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि संकलिश परिणाम वाला। अतएव इन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध होकर पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंध हो सकता है। यहाँ जो उन्होंने लिखा है वो हम काटने को बोलेंगे, क्यों वो पढ़ के मैं पहले सुनाती हूँ आपको। तथा उपशम श्रेणी से उतरकर पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़कर उपशांत मोह होने तक का काल अंतर्मूर्त है, और बीच में अंतर देकर इतने काल तक इन कर्मों का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। इसलिए इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है।
ये तो घटित नहीं होता है ना, अंतर्मूर्त तो एक समय कभी अनुत्कृष्ट का एक ग्यारहवें ले जाए और एक समय के पश्चात मर जाए तो अनुत्कृष्ट का अंतर हो जाएगा, पर यहाँ पे ये जो बताया है ना
तो ये घटित नहीं होता, हमने इसको काट दिया था। देखो देखो
तथा से काटना पड़ेगा,
देखो फिर से क्यों काटना है वो बताती हूँ। ऊपर उन्होंने क्या बताया था, असंगी तक के जीवों के अनुभाग बंध नहीं होता, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा था। अब आगे लिखते, एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध होकर पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंध हो सकता है, इसलिए उत्कृष्ट का अंतर एक समय लिया था। अब उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर बता दिया, फिर यहाँ अंतर्मूर्त की बात क्यों उठाई उन्होंने,
ये तो पूरा काटना पड़ेगा।
देखो तथा देखो अभी अनुत्कृष्ट का अंतर उनको बताना था, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय तो हो सकता है
वो तो उत्कृष्ट बन गया। हाँ।
तथा उपशम श्रेणी से उतरकर पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़कर उपशांत मोह होने तक का काल अंतर्मूर्त है, वहाँ तो अनुत्कृष्ट का काल था, वो अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं था, अनुत्कृष्ट का बंध अंतर्मूर्त तक होता रहा था, और बीच में अंतर देकर इतने काल तक इन कर्मों का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। इसलिए इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का। यहाँ तो अनुत्कृष्ट का अंतर ग्यारहवें गुणस्थान में होता है, बस इतना ही लेना, ये पूरे ये गड़बड़ी की बात है उनकी।
ना
और ऊपर भी जो उन्होंने वाक्य बताए ना, फिर मैं बताती हूँ क्या निकालना। विशेषार्थ में पहले में क्या उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट अनुभाग बंद होकर एक समय के बाद पुनः हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर के लिए कहा असंगी में भेजना उसको, इसलिए हाँ। तो तीसरी लाइन में लास्ट में क्या कहा, अतएव इन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल का, ये बात हुई ना। अब अनुत्कृष्ट की बतानी थी, अनुत्कृष्ट का अंतर बताना था, तो उन्होंने एक्चुअली उत्कृष्ट का ही फिर अंतर बताया कि यहाँ क्या लिखा है, एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध होकर पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंध हो सकता है, ऐसा नहीं लिखना था। तो
एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग बंद
होकर एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग बंद होकर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है, ऐसा लिखना था। उत्कृष्ट करो हाँ, तो एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग बंद होकर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, अभी अनुत्कृष्ट करो इसलिए अनुत्कृष्ट करो। क्यों? क्योंकि अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय बताना था उनको, ये उन्होंने काल पर घटित किया सब, उन्होंने अनुत्कृष्ट का काल इसमें घटित किया है। अब आगे की हमको 1, 2, 3, 4 लाइन निकालनी है, तथा से लेकर अंतर्मूर्त कहा है वहां तक, चौथी लाइन।
किसकी बात कर रहे हैं? हम लोगों ने देखा ना कि चार घाती कर्म,
उसके अनुत्कृष्ट का अंतर देखना था।
हमें अंतर्मूर्त का अंतर होता है, उसके लिए एक वाक्य लिखना पड़ेगा,
वो लिखा लिखते ना। देखो एक समय तक फिर मैं हमने सुधारा है वो देखते, एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग बंद होकर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है तथा उपशांत मोह में अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर उपशांत मोह में होता है। एक मिनट, वो इसलिए वाला इसलिए रखो, चौथी लाइन का आप लाल पेन से ही कर रहे हो ना, पेंसिल से तो करते नहीं हो, इसलिए की बात रखना। हाँ देखो फिर से, अभी हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का चेंज किया ना, तथा के बाद अनुत्कृष्ट का अंतर उपशांत मोह में होता है, ऐसा लिखा। तथा अनुत्कृष्ट का अंतर उपशांत मोह में होता है, अब बाद में ज्वाइन करो इसलिए, उपशांत मोह में होता है
अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर।
नहीं, उपशांत मोह में लगातार रहेगा तो उत्कृष्ट होगा, नहीं नहीं वो सब निकाला हमने। हाँ देखो अभी कहाँ से निकालना है, तथा के बाद है ना, उपशम श्रेणी से उतर कर वहां से निकालना, सेकंड लाइन पूरी निकालो, पुनः उपशम और बीच में अंतर देकर इतने काल तक इन कर्मों का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है यहाँ तक निकालो, उन्होंने वो अनुत्कृष्ट का काल बताना चाहा था। अब इसलिए रखो, इसलिए इन कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा, ये बराबर हुआ अभी। हाँ है ना, है ना, विशेषण गड़बड़ी हो गई क्योंकि तो अंतर के बदले काल घटित करना चाहूंगी। अभी आगे बढ़ेंगे, ये चार घाती का हो गया, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद कहाँ है, सूक्ष्म सांप्रदायिक क्षपक के अंतिम समय में, तो दोबारा उत्कृष्ट कब होगा अब उस जीव का,
हो गए
तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद क्षपक श्रेणी में उपलब्ध होता है, इसलिए इनके अंतर काल का निषेध किया है। जो जीव यानी उत्कृष्ट का तो अंतर नहीं है, जो जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर एक समय या अंतर्मूर्त काल तक इनका अबंधक होकर पुनः इन कर्मों का बंध करता है, उस जीव की अपेक्षा इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त उपलब्ध होने से बहुत प्रमाण कहा है। अब ये बराबर है,
यही
ऊपर भी लगाना, वहाँ हमने लास्ट टाइम इसको एरो किया था, ऊपर का जहाँ निकाला था वहाँ एरो यहाँ तक ज्वाइन किया था हमने। यहाँ बराबर हो गया, आगे बढ़े। आयु कर्म का एक समय का अंतर देकर उत्कृष्ट अनुभाग बंद संभव है, उत्कृष्ट किया फिर अनुत्कृष्ट किया फिर उत्कृष्ट किया, एक ही अंतर्मुहूर्त के अंदर तो एक समय का अंतर हुआ, तथा अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में और कुछ काल से न्यून अंत में। कुछ काल से न्यून क्यों? क्योंकि बीच वाले 33 सागर की आयु बांधने हैं और बांधने वाले अप्रमत्त ने बांधी है, तो अप्रमत्त का रिमेनिंग आयु 33 सागर की आयु, फिर बाद में जो कुछ ये सब अर्धपुद्गल में से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए कुछ काल से न्यून अंत में अप्रमत्त संयत होकर, क्योंकि उसका स्वामी अप्रमत्त जी है, आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है। इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण कहा है। समझ में आई ना बात? जो जीव अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के बाद एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करने लगता है, उसके आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है। यानी जो लगातार आयु बांध रहे अंतर्मुहूर्त तक, एक समय के लिए उत्कृष्ट किया फिर अनुत्कृष्ट किया तो एक समय का अंतर हुआ। और जो पूर्व कोटि के प्रथम त्रिभाग के आयु बंध के अंतिम समय में, यानी वो जो वंशर पूर्व कोटि बाद बाकी है तब उसका प्रथम त्रिभाग हुआ था, अंतर्मुहूर्त तक आयु बांधी, अंतिम समय तक बांधी, तो अनुत्कृष्ट का अंतर शुरू हुआ। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करके पुनः उत्कृष्ट आयु के साथ देव या नारकी होकर, हमको तो अनुत्कृष्ट देखना है ना, तो देव बनाओ या नारकी बनाओ, यह 6 महीना काल शेष रहने पर
सबसे पता
हमने उसको मरण के अंतर्मुहूर्त पहले लिखा है, परंतु यहाँ उसकी जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि अनुभाग के लिए अंतर उसकी
कंडीशन पर पहले
नहीं, ये क्यों अंतर्मुहूर्त पहले करना? क्योंकि हमको वो काल बढ़ाना है, अंतर बढ़ाना है, इसलिए
लिखना है।
अनुत्कृष्ट ही करना है ना उसको, उत्कृष्ट की बात नहीं, मरण के अंतर्मुहूर्त पहले।
ये 6 महीना काल सही रहने पर इसका निकल नहीं,
वो तो हाँ, देव या नारकी होकर मरण के अंतर्मुहूर्त पहले लिखना, 6 महीना काल शेष के रहने पर नहीं। हाँ, पर 6 महीना काल शेष रहने पर हमने निकाला नहीं था। देखो पेज नंबर 45 पर, हाँ, देव या नारकी होकर यह रखो 6 महीना काल शेष रहने पर, ये इतना निकाल दो। और वहां क्या लिखाना है? मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, हाँ, पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है, उसके आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर उपलब्ध होता है, क्योंकि वो 33 सागर में से अंतर्मुहूर्त माइनस किया उसका आबादा, और यहाँ अंतर पूर्व कोटि में से अंतर्मुहूर्त गया, तो दोनों मिलकर साधिक 33 सागर हो गया। हाँ जी, वो बहुत ज्ञानी थे करना नियुक्त पंडित फूलचंद जी शास्त्री उस जमाने के।
तो ये देवायु का उत्कृष्ट करके बन जाएगा ना
दो,
नहीं ये तो मध्यम परिणाम में होता है,
जघन्य है वो मध्यम परिणाम, जघन्य के लिए 4 समय, आप उल्टा पुल्टा करें, कोई भी उत्कृष्ट संकलेश हो या उत्कृष्ट विशुद्धि हो, 2 समय से ज्यादा नहीं होते, आयु के योग्य भी, आयु के लिए वो उत्कृष्ट कहलाएगा ना, तत्प्रायोग्य है, पर तत्प्रायोग्य है, पर वहाँ आयु उत्कृष्ट बन रही है ना, आयु के लिए वो उत्कृष्ट है कि नहीं, और आयु के लिए जो जघन्य है
वो तत्प्रायोग्य संकलेश पर, तो भी वो दो ही समय के लिए,
वो तत्प्रायोग्य संकलेश भी मत कहो, मध्यम परिणाम को तत्प्रायोग्य संकलेश कहोगे तो नरकायु बन देगी, मध्यम परिणाम में कोई भी आयु बन सकती है। वो जघन्य के लिए, यहाँ उत्कृष्ट का प्रकरण है, आपको जगड़ने की बात कहीं स्ट्राइक है आपके मन में?
मेरे उत्कृष्ट के और जगड़ने के लिए दोनों के लिए
उत्कृष्ट समय देखो ना, आयु का उत्कृष्ट का समय कितना है?
दो
ही समय, और अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर मुहूर्त है। देखो यही कारण है कि आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर सादिक 33 सागर कहा है। यहाँ तक हो गई ना बात, ये विशेषार्थ हुआ। अब मार्गणाओं में देखेंगे, गति मार्गणा है पहले नारकियों में, ये हमेशा उनका यही क्रम है। नारकी तिर्यंशी मनुष्य देव नारकियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि हमने देखा है सात कर्मों में से चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट कब होगा? वही तो संक्लेश वाला मिथ्या दृष्टि, और वेदनीय नाम गोत्र का भी गोत्र के लिए तो गोत्र के लिए तो सम्यक तो किसन में, और वेदनीय नाम के लिए
सम्यक दृष्टि को
नहीं, नहीं वो तो जगन्य की बात है सम्यक तो किसन में,
ये तो प्रशस्त प्रकृति
उत्कृष्ट की बात है, वो तो सम्यक दृष्टि लेना पड़ेगा।
सॉरी
वेदनीय नाम गोत्र तीनों के लिए सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध।
ना
मिथ्या दृष्टि रहा, उत्कृष्ट नहीं किया। उत्कृष्ट कब करेगा? पर्याप्त होने पर, पर्याप्त होने पर उसने उत्कृष्ट किया, आयु के अंत में फिर उत्कृष्ट किया, कुछ कम इसलिए लिया पर्याप्त होने के बाद।
दोनों में समेत पद में भी दोनों और अंतर्भूत अंतर्भूत कम करके समेत में उत्कृष्ट बन पाना,
यानी चार घाती के लिए पर्याप्त होने के बाद, और तीन अघाती जो है वेदनीय नाम गोत्र
पर्याप्त के बाद
वो समय दृष्टि की बात है। समय दृष्टि सर्व विशुद्ध, अब वो तो दोनों ओर करना है समय दृष्टि। सातवें नरक में तो मरण के पूर्व, तो उसके भी पूर्व में, क्योंकि मिथ्या तो में जाके मरेगा, उसके पहले समय दृष्टि हुआ था और शुरुआत में अंतर्मुड के बाद हुआ था, इसलिए कुछ कम 33 सागर हो जाता। समय दृष्टि सर्व विशुद्ध, अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तभी उसका अंतर पड़ेगा। उत्कृष्ट अंतर दो समय, ये क्यों तेजल? अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर दो समय। लक्ष्मी यहाँ क्या लिखा? अरे उत्कृष्ट कर रहा है, अनुत्कृष्ट का अंतर दो समय है, तो दो समय तक उत्कृष्ट किया ना लगातार। अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा? जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तो उत्कृष्ट दो समय के लिए करेगा, वो अनुत्कृष्ट का अंतर दो समय हुआ।
उत्कृष्ट दो समय के लिए हो सकता है,
उत्कृष्ट का मैक्सिमम काल
दो समय है,
वो अनुत्कृष्ट का अंतर हुआ।
उत्कृष्ट वो दो समय उत्कृष्ट कर सकते हैं, तो वो
अंतर होगा लगातार। उत्कृष्ट कितने समय तक होगा? देखो देखो ओघ में क्या देखा था, ओघ में देखो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय हो सकता है कहीं पर भी, तो ओघ में दो समय नहीं लिखा क्योंकि ओघ में तो 11 गुणस्थान भी था, वहाँ अंतर्मुहूर्त लिख दिया अनुत्कृष्ट के लिए एक समय से अंतर्मुहूर्त। नारकियों में अब यहाँ बंधन नहीं हो ऐसा कभी नहीं होगा, बंध तो होता ही रहेगा, तो यहाँ नारकियों में तो बात नहीं, तो कहाँ अंतर पड़ेगा? अनुत्कृष्ट का अंतर जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तब, तो उत्कृष्ट लगातार कितने समय तक होता है? क्या दो समय, तो अनुत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर दो समय। जघन्य अजघन्य की बात नहीं, यह उत्कृष्ट का प्रकरण है।
तो काल देखना पड़ेगा।
आप किसकी बात देख रहे
हैं?
हाँ काल, काल देखो ना, नारकी ने काल देखो, उत्कृष्ट का देख रहे कि जघन्य का देख रहे? देख लो पेज नंबर 27 पर सातों कर्मों के लिए बताया स्वामी, अलग अलग है। चार घाती वो मिथ्या दृष्टि संकलेश वाले, वेदिनी नाम गोत्र समय दृष्टि जो है सर्व विशुद्ध, सर्व विशुद्ध हो या सर्व संकलेश हो, एक या दो समय तक ही परिणाम अनुभाग के योग्य परिणाम हो। समझ में आई बात ये? हाँ, ये मेरे चार घाती तीन घाती सबके लिए अंतर तो ऐसा ही है, स्वामी जुदे जुदे हैं। आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना है, क्योंकि नरक में ही रखना है, एक ही बार आयु बनती है, तो उत्कृष्ट भी एक समय का अनुत्कृष्ट होकर उत्कृष्ट हो सकता है, या अनुत्कृष्ट का एक समय के उत्कृष्ट होकर फिर अनुत्कृष्ट हो सकता है, तो एक समय का अंतर दोनों में घटित होता है। उत्कृष्ट अंतर के लिए 2 बार आयु का बंध होना चाहिए, तो 6 महीना पहले आयु बंधी और लास्ट 8वें अपकर्ष में फिर दोबारा बंधी, तो अनुत्कृष्ट का या उत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट अंतर इतना हुआ, कुछ कम 6 महीना।
उत्कृष्ट अंतर मनुष्य आयु के लिए, उत्कृष्ट अनुपात के लिए मनुष्य आयु, क्योंकि दोनों कोटि पूर्वक की बनती है, पर मनुष्य आयु की
आयु कर्म इन जनरल लिया, वहाँ उत्कृष्ट किसका होगा? तो मनुष्य आयु का होगा, वो तो हमने पहले देखा था स्वामी जी ने। इसी प्रकार सब नरकों में, अभी 7वें नरक में तो तीरियंच आयु को ही लेना है, 7 कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, पर आयु के लिए तो कुछ कम 6 महीना सब में लग गए। विशेषार्थ, यहाँ सामान्य से नरक में यह अंतरकाल कहा है, इसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट काल का विचार करके ले आना चाहिए। नरक में यानी काल जब पता है तो अंतर हमको समझ में आ सकता है। नरक में उत्पन्न होने के बाद पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है, उसके बाद अंत में वह संभव है, इसलिए यहाँ 7ों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कहा है। प्रथमादि नरकों में जिस नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका विचार कर उस नरक में 7ों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल ले आना चाहिए, जो वहाँ की स्थिति है उसमें कुछ कम कर देना। तो शुरुआत में एक बार, अंत में एक बार, यानी अघाती के लिए तो सम्यक्त में रखकर शुरुआत में और लास्ट में करना। शेष कथन सुगम है, ये नारकियों की बात हो गई। अब तीर्यंचों में, अब तीर्यंच कहने से उत्कृष्ट करेगा और एक इंद्रिय में गया तो भी तीर्यंच ही रहा है ना, तो 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि उत्कृष्ट के बीच में जघन्य हो सकता है एक समय, सॉरी अनुत्कृष्ट हो सकता है एक समय, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जिसको कहेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन। समझ में आई? अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, अब तीर्यंच में रहे तो लगातार अनुत्कृष्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो अनुत्कृष्ट का अंतर कब संभव है? ओनली जब वो उत्कृष्ट कर रहा है, अदरवाइज 4 घाती कर्म तो हर समय बंद रहे। ओग में तो 11वां गुणस्थान था, यहाँ वो कुछ बात नहीं है, तो उत्कृष्ट कितने समय तक कर सकता है? हाँ, तो यहाँ संख्या समय कहेंगे। देखो, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर संख्यात समय है। संख्यात समय में ये 2 समय लिए, क्योंकि उत्कृष्ट 2 ही समय तक कर सकता है लगातार, तो संख्या समय ने 2 ही समय हो गए, 4-5 समय हो गए ऐसा नहीं, नहीं होगा। वेदनीय नाम और गोत्र के, अभी सर्व विशुद्ध पांचों गुण स्थान वाला है, हिरियंच में रहते हुए। तो पहले वो में कराना और फिर उसको मिथ्या तो मेरे ले जाना और फिर बाद में कराना। तो वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि एक समय के अंतर से फिर दोबारा उत्कृष्ट हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अर्ध पुद्गल प्रमाण है लिखा ना, अर्ध पुद्गल परिवर्तन। हाँ, ये परिवर्तन लिखना रह गया, यानी कैसा कि तीर्यंच में पहले भाव में उसने, यानी तीर्यंच हुआ अन्य मार्गणा से, वो तीर्यंच हुआ पंचेंद्रिय हुआ, उसने सम्यक्तों के साथ वो संयम सॉरी संयमा संयम हुआ, सर्व विशुद्धि में उसने उत्कृष्ट अनुभव किया। वेदनीय नाम गोत्र की बात चल रही, फिर वो मिथ्यात्व में गया और तीर्यंच में ही घूमता रहा, तीर्यंच मार्गणा नहीं बदलनी। फिर उस तीर्यंच में से निकलने के पहले अर्ध पुद्गल परावर्तन में मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है, उसके पहले भव में वो पंचेंद्रिय हुआ, संगी पंचेंद्रिय, उसने पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, फिर सर्व विशुद्ध हुआ, उसको शबंध किया, फिर गिर वह समय के साथ तो मनुष्य में नहीं आएगा, देव में जाएगा। तो इसलिए क्या क्या है, फिर मिथ्या तो में जाके
मनुष्य का भाव छोड़ के जो अर्ध पुद्गल परावर्तन है,
हाँ उतना यानी वो, क्योंकि वो पांचों गुणस्थान में मरना मरा नहीं, वो मिथ्या तो में ले जाके मनुष्यायु बांध के मनुष्य में आकर फिर वो उस भाव में मोक्ष जाएगा, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन हमसे मिनिमम कम करना है। मनुष्यायु भी छोटी बांधी है उसने, 10 साल की बांधी मान लेते हैं। तो ये कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन हुआ आयु कर्म के। तीर्यंचों में उत्कृष्ट किसका है,
मनुष्य का नहीं,
नरकायु का था,
नहीं नरकायु का तेतीस।
अभी तो इन्होंने प्रश्न पूछा था ना, तीर्यंचों में उत्कृष्ट आयु,
नरकायु का तेतीस।
देखो आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, अब परंतु इसको तीर्यंच में ही रखना है, भले नरकायु बांधेगा तो नरक में जाने से क्या फायदा है। तीर्यंच में रहते हुए दो बार नरकायु बांधने, एक ही भाव में बांधनी है। यहाँ लिखा है ना, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर एक पूर्वकुटि का कुछ कम त्रिभाग है, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का, अनुत्कृष्ट ने तो नरकायु छोड़कर बाकी सब अनुत्कृष्ट ही है ना, उसके लिए जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक तीन पल्ले, क्योंकि तीर्यंच का तीर्यंच में रहा, तीर्यंच ने भोगभूमि के तीर्यंच आयु बांधी, तीर्यंच का तीर्यंच रहा, उस तीर्यंच ने फिर देवायु बांधी, ख्याल में ना।
नहीं, पर जो तीर्यंच ने तीर्यंच का आयु बांधी तीन पल्ले,
वो अनुत्कृष्ट थी, उसके लिए उत्कृष्ट नरकायु थी। अभी आपने प्रश्न पूछा था ना, तीर्यंचों में उत्कृष्ट आयु आपने मैंने कुछ नहीं लिखा
है, मैंने भी नहीं लिखा है, पर चाहे बात हो
देखो जघन्य अनुभाग का कहाँ बात है,
उत्कृष्ट अनुभाग
उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम, पर उत्कृष्ट अनुभाग बंध आयु में नरकायु ही है,
क्योंकि 22 अगस्त से सारे अधिक 22 अगस्त।
अभी अभी आपने 8 नंबर के पेज पर प्रश्न पूछा था ना, इसी का
हाँ,
यहाँ नरकायु लिखना नहीं, हमने शायद बोलने में आया होगा, पर यहाँ तो नीचे नहीं के लिखा है कहीं, आयु इतना ही लिखा है उन्होंने, उसके आयु कौन सी वो नहीं बताई। अभी समझ लो, अभी उत्कृष्ट अनुभाग बंधन नरकायु का होता है,
ये हम सब आज के 44 नंबर का दे सकते हैं।
नहीं तो वो उत्कृष्ट में जो कोई तीर्यंच है उसने
नरकायु बांधी, नरकायु बांधी तो एक ही भाव में दो बार बांधेगा। देखो एक मिनट, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है, बराबर है साधिक कहाँ, कुछ कम त्रिभाग यानी त्रिभाग बाकी था तब एक बार बांधी, फिर 8वें अपकर्ष में बांधी, पहले आठवें अपकर्ष के बीच का जो काल है वो वहाँ का अंतर है। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का यानी कोई भी आयु बांधी है किसी भी अनुभाग के साथ, तो अब हमको घटित करना है ना, तिर्यंश में तिर्यंश को रखना है, तो हमको तिर्यंश आयु बांधनी चाहिए। तो अंतर पूर्व कोटि पहले तिर्यंश आयु बांधी, कौन सी? तीन पल्ले वाली भोगभूमि। सभी आयुओं में उसको हम अनुत्कृष्ट ही कहेंगे।
हाँ।
तो तीन पल्ले वाली बांधी और उस तीन पल्ले वाले ने देवायु बांधी,
असंक्षेपाता
में बांधी। देखो बंथर पूर्व कोटि पहले तिर्यंच आयु बांधी, हाँ आयु कर्म में तीन पल्ले की तिर्यंच आयु बांधी। और उसने आयु के अंत में देवायु बांधी। अब यहाँ विशेषार्थ पढ़ेंगे। देवायु तिर्यंच उसके लिए अनुत्कृष्ट ही थी। विशेषार्थ तिर्यंचों में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के होता है और इनका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। तिर्यंचों में रहते हुए वो असंगी में चला गया, लेकिन जैसे लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, इसलिए इनमें चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। तो पंचेंद्रिय होते ही थोड़ा ही उत्कृष्ट करेगा, कुछ काल के बाद किया उसने। तथा तिर्यंचों में इन कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उत्कृष्ट रूप से संख्यात समय अर्थात दो समय तक होता रहता है, वो तो हमने पहले काल में देखा था। इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर संख्यात समय कहा है। इनमें वेदनीय, यहाँ आयु लिखा उसको नाम करो, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का लास्ट टाइम किया था ना, हाँ कर लो। वेदनीय नाम वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संयता संयत जीव के होता है। और तिर्यंच रहते हुए, क्योंकि मार्गना नहीं बदलनी चाहिए, इनमें संयता संयत गुण स्थान का कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतरकाल संभव है। यानी तिर्यंचों के पहले भाव में उसने किया संयता संयत, फिर मिथ्यात्व में गया और लगातार तिर्यंचों में रहा, पर अभी असंख्यात पुद्गल नहीं करना, अर्ध पुद्गल, क्योंकि अभी समय दृष्टि है वो। तो इसके बाद फिर उसको संयता संयत करके फिर मिथ्यात्व में ले जाएगा, फिर मनुष्य होकर जल्दी में जल्दी मोक्ष जाएगा। इसलिए इनमें वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, यहाँ नाम लिखा है ना, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर उक्त प्रमाण कहा है। अब आयु की बात है। जो तिर्यंच पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु कर्म का उत्कृष्ट उक्रू करना ब्रह अनुभाग बंध करके पुनः अंतिम त्रिभाग में उत्कृष्ट अनुभाग बंध करता है, उसके आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर उपलब्ध होता है। वैसे उत्कृष्ट का जघन्य अंतर तो एक समय होता है कहीं पर भी, यानी उसके पहला अपकर्ष और आठवां अपकर्ष के बीच का अंतर जो है
पूरा
वो नरकायु के लिए लेना, उत्कृष्ट अनु आयु के लिए लेना। अतएव तिर्यंचों में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल कहा है। उक्त प्रमाण कुछ कम पूर्व कोटि का त्रिभाग। ऐसा जीव मरकर पुनः तिर्यंच नहीं होता, क्योंकि उसने नरकायु बांधी है, इसलिए नरक में जाएगा, वो तिर्यंच नहीं होता। इसलिए एक पर्याय में ही बंधने वाली आयु की अपेक्षा यह अंतरकाल उपलब्ध किया गया है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग लेना था। इसलिए तिर्यंच आयु कर्म का पूर्व कोटि आयु के प्रथम त्रिभाग में अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करके और तीन पल्ले की आयु वाला तिर्यंच होकर वहां, यहाँ लिखा ना शेष महीना काल शेष रहने, छह महीना, यहाँ पर लिखना अंतिम अपकर्ष में, अंतिम अपकर्ष लिखो या अंतिम अंतर्मुख कहो, संक्षेपाधा भी कह सकते उसको, अंतिम अपकर्ष में या ब्रैकेट में कहो असंक्षेपाध्या में। पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद कर सकता है क्योंकि यहाँ तो उसके दो सागर के नीचे ही होगा, समय दृष्टि भी होगा तो सौदर में ईशान की आयु बांधेगा तो उसका अनुभाग तो उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा। ये आपने निकाला, छह महीना शेष रहने पर निकाल दो, उसके बदले अंतिम अपकर्ष में लिखो या असंक्षेपाध्याय में लिखो। पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है, इसलिए इनमें आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक तीन पल्य कहा है, यानी वहाँ का तीन पल्ले में अंतर्मूर्त माइनस किया और यहाँ से पूर्व कोटि वन थर्ड पूर्व कोटि में से अंतर्मूर्त माइनस किया, यानी तीन पल्ले और वन थर्ड पूर्व कोटि कुछ कम,
दो
अंतर्मूर्त माइनस करना। ये हो गई सामान्य से तिर्यंचों की प्रवृत्ति। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में, अब पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक जब कहते हैं उसकी काय स्थिति हमको ख्याल में रखना, काय स्थिति ख्याल में रखना। देखो अभी कहते हैं कि पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि लिखा ना, पूर्व कोटि पृथक्त्व लिखना, देखो उत्कृष्ट लिखना है। अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि ये कंडीशन लगाए है, आप कहेंगे पूर्व कोटि पृथक्त्व में तीन पल्ले वाला क्यों नहीं लिया,
तीन पल्ले वाला
वो तो अति संकलेश वाला, चार घाती कर्मों का अति संकलेश वाला लेना है, भूख भूमि के तो ऊपर की तीन शुभ लेशाएं होगी वो अति संकलेश उसको नहीं ले सकते,
इसलिए पूर्व कोटि
आघाती की बात, आघाती में भी तीन पल्ले नहीं ले सकते क्योंकि आघाती में पांचवा गुणस्थान होगा क्या तीन पल्ले वाले को, स्वामी कौन है उसको देना है ना, भले वो तीन पल्ले वाला शुक्ल रेशा तक चले जाएगा पर गुणस्थान उसका मैक्सिमम चौथा हो सकता है, इसलिए सातों कर्मों के उत्कृष्ट के लिए ये तो कर्म भूमि का ही तिर्यंच लेना पड़ेगा।
तो कितने सारे आ जाएंगे,
कितने सारे हो गए ना,
98 लेना पड़ेगा,
98 होते कि 96 होते,
96 सॉरी
48 के डबल में
48 का 96 हो जाएगा,
यानी पूर्व कोटि पृथक्त में सामान्य सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच के 96 हो, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त लेंगे
तो 48
तो 48 हो गए, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त वो कितने होते हैं 48 पूर्व कोटि और तिर्यंच नहीं
16
पूर्व कोटि संज्ञा संज्ञा दोनों ऊपर कहाँ करना है,
नहीं ये पृथक को ऐड किया ना
दूसरे
वो पृथक पर कई अर्थ होता
है ऊपर मैं देखा
नहीं ऊपर कुछ नहीं, देख पूर्व कोटि पृथक्त्व का अर्थ क्या है ऊपर कहाँ, अच्छा अच्छा ये तो
हम
ऊपर हाँ, होगा देखें ऊपर जो है पंचेंद्रिय तिरिक्ख तीन पूर्व कोटि पुधत्तम लिखा है वहाँ पर, पुधत्त लिखा है वो यहाँ हिंदी में नहीं लिखा था, अभी समझ में आए क्यों यहाँ भोग भूमि वाले को क्यों नहीं लेना, ना सात कर्म घाती कर्मों का उत्कृष्ट करता है ना वेदिनी नाम गोत्र का करता है, क्योंकि वेदिनी नाम गोत्र वाले को पांचों गुणस्थान वाला सर्व विषय है और बाकी के लिए मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला, भूमि में ऐसा संकलेश नहीं होगा तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद करें, इसलिए पूर्व कोटि पृथक पर लिखा तीन शुभ लेशा, पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा हो सकती उनकी परंतु पर्याप्त होने पर नहीं लेना, वही उसी की चर्चा चल रही। क्यों नहीं लेना? तीरियंश है वो, तीन पल्ले वाला भी तीरियंश है। अभी आयु का कहाँ प्रश्न है? सात कर्मों की बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे आपको, देखो देखो अभी चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट कौन कर सकता है? संकलेश वाला, ऐसा संकलेश भूभूमि वाले को नहीं होगा। और वेदिनी नाम गुण वो पांचवे गुणस्थान वाला उत्कृष्ट करता है, और वहाँ चौथे के ऊपर गुणस्थान नहीं होते।
ये मेरे पूछा सब,
ये इसी की चर्चा चल रही थी। हाँ वो पूर्व कोटिया कितनी होगी इंद्र से? अभी अनुत्कृष्ट का, अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा? जब वो उत्कृष्ट कर रहा है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय, अदरवाइज उसका लगातार बंध होता ही रहता है ना। जो उत्कृष्ट नहीं करेगा तो अनुत्कृष्ट होता ही रहता है। आयु कर्म का भंग सामान्य तीर्यंचों के समान है। सामान्य तीर्यंचों के समान का अर्थ क्या है?
उत्कृष्ट के लिए कुटकम सेवा।
देखो उत्कृष्ट तो नरकायु का करेगा,
कुटकम सेवा
शेमास कैसे?
नहीं कुटकम कोटिपूर्व
क्योंकि बांधने वाले तो पंचनीय तीर्यंच है। नरकायु तो एक भाव ने उत्कृष्ट आयु के लिए अनुभाग के लिए एक भाव में लेना दो बार, तो कुछ को मंत्र पूर्व कोटि और अनुत्कृष्ट के लिए यहाँ मंत्र पूर्व कोटि के लिए बांधी और वहाँ तीन पल्ले के अंत में बांधी। जो तीर्यंचों के ओग में देखा था वैसा ही
ऊपर ही देखा था,
अभी अभी देखा ना। सादिक तीन पल्ले अनुत्कृष्ट के लिए और उत्कृष्ट के लिए कुछ कम मंत्र पूर्व कोटि। पंचेन्द्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में, अभी अपर्याप्तकों में लगातार रहेगा तो भी अंतर्मूर्त रहेगा। सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, यहाँ भी हमको काल समझना है। चार घाती के लिए सर्व संकलेश वाला लेना, वेदिनी नाम गोत्र के लिए सर्व विशुद्ध वाला लेना। तो कहते जघन्य अंतर एक समय होगा, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त क्यों? काय स्थिति लेना उसकी, शुरुआत में और लास्ट में एक एक बार किया, अंतर लाना है इसलिए उसको उत्कृष्ट करना पड़ा दो बार। ये जरूरी नहीं कि उत्कृष्ट करेगा ही करेगा, तो काय स्थिति उसकी अंतर्मूर्त है। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का, अनुत्कृष्ट का अंतर कब होता है? केवल वो उत्कृष्ट करेगा तो ही। जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय, समझ में आई बात है? आयु कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि आयु बंध के काल में कभी भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो सकता है एक एक समय के लिए, तो दोनों का जघन्य अंतर एक समय। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अभी पंचेन्द्रिय तीर्यंच अपर्याप्त, दोबारा पंचेन्द्रिय तीर्यंच अपर्याप्त हुआ दूसरे भाव में, और दो भावों का मिलकर भी अंतर निकालना है तो भी अंतर्मूर्त होगा।
उत्कृष्ट के लिए तो उसको मनुष्य भी बांधना पड़ेगा,
उत्कृष्ट के लिए तो एक ही भाव में दो बार,
एक ही भाव में दो बार लेना।
उत्कृष्ट के लिए मनुष्य, अनुत्कृष्ट के लिए तीर्यंच,
वो लगातार
वो दो भाव ले सकते हैं हम। आयु कर्म का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट में उन्होंने मनुष्य आयु
लेना,
एक ही भाव। फिर भी उसके यानी पहले और आठवें अपकर्ष का बीच वाला अंतर लेना। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, अपर्याप्त किस किस के? त्रस और स्थावर तथा सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। ये पहले भी ऐसा ही वाक्य आया था ना, यानी सब अपर्याप्त, त्रस और स्थावर ऐसे अलग अलग नहीं है। अपर्याप्त किसके? सब अपर्याप्त, त्रसों के सभी अपर्याप्त और स्थावर के भी सभी अपर्याप्त, इस तरह से। ऊपर क्या लिखा है? सब अपजत तसानम स्थावरानम च,
तो यहाँ पे और ऐसे त्रस्त के
नहीं नहीं ऐसा भी कौन इसी प्रकार सब अपर्याप्त त्रस अपर्याप्त सावर अपर्याप्तता सब सूक्ष्म पर्याप्त जीवन के जानना चाहिए। सब अपर्याप्त में एक्चुअली सबको लिया ही लिया था, यानी एक इंद्रिय अपर्याप्त है, द्विंद्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय चतुर इंद्रिय या कायिकों की अपेक्षा स्थावर में लेना, अलग अलग पांच कायिकों के अपर्याप्त या त्रसों के अपर्याप्त, पंचेंद्रियों के अपर्याप्त सब ले लेना। यहाँ तो पंचेंद्रिय तीर्यंश अपर्याप्त की बात की, तो इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के सबके अपर्याप्त में ऐसा ही समझना, यानी इसमें सूक्ष्म अपर्याप्त भी आ गए, उनको सूक्ष्म पर्याप्त भी अंतर्मुख की काय स्थिति वाले, इससे उसमें भी ये बात लागू होती है।
तो यहाँ पे जो सूक्ष्म पर्याप्त है उधर सूक्ष्म अपर्याप्त ले सकते
ना, ना ना पहले लिखो इसी प्रकार सब अपर्याप्त कॉमा करो, तरस के बाद अपर्याप्त जोड़ो,
सावर के बाद अपर्याप्त,
सावर के बाद भी अपर्याप्त जोड़ो, पहले हमने एक बार लिखा था इसे
सूक्ष्म पर्याप्त,
अभी सब अपर्याप्त में सूक्ष्म पर्याप्त आ गए थे
तो पे
अब सूक्ष्म को पर्याप्त को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि लगातार सूक्ष्म पर्याप्त में रहने का काल अंतर्मुख से ज्यादा नहीं है। विशेषार्थ सामान्य तीर्यंचों में पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक की मुख्यता से ही आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध किया गया है। इसलिए यहाँ आयु कर्म का भंग सामान्य तीर्यंचों के समान कहा, इसमें कोई विशेषता नहीं है। तीर्यंचों में आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतरकाल किसी भी तीर्यंच के उपलब्ध हो सकता है, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। यहाँ सब स्थावर अपर्याप्त जीवों में सब सूक्ष्म अपर्याप्त और सब बादर अपर्याप्त जीवों का भी अंतर हो जाता है, क्योंकि इनकी काय स्थिति अंतर्मुख काल से अधिक नहीं है। त्रस अपर्याप्त जीवों का निर्देश अलग से किया ही है, इन सब अपर्याप्तकों की काय स्थिति अंतर्मुख काल होने से इनमें पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों के समान अंतरकाल बन जाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शेष कथन सुगम, यानी वही उन्होंने विशेषाद बताया, कुछ विशेष नहीं है। अब मनुष्य त्रिक में, मनुष्य त्रिक कहने से सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य ने चार घाती कर्म और आयु कर्म का भंग पंचेंद्रिय तीर्यंचों के समान है, यानी जघन्य अंतर एक समय होगा उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक तो हो जाएगा। ना ना मनुष्यों में देखो तीर्यंचों में संगी असंगी दोनों आ गए, यहाँ तो 48 ही होते हैं, पूर्व कोटि पृथक 48 पूर्व कोटि ये सामान्य में 40, और मनुष्य पर्याप्तों में
16
पूर्व कोटि, और मनुष्यनी में 8 पूर्व कोटि। देखो चार घाती कर्म, आयु कर्म का अलग बताते, तो चार घाती कर्मों में क्या होगा, उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर एक समय होगा, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक, पहले भव में और अंतिम भव में उसने उत्कृष्ट किया। आयु कर्म में कैसे, मनुष्य ने आयु बांधी, तो मनुष्य ने अगर उत्कृष्ट आयु बांधी है तो देवायु बांधेगा, एक ही भव में दो बार बांधना है, तो बंतर पूर्व कोठी में कुछ कम।
उत्कृष्ट अनुभाग के लिए हम लोग ले सकते हैं ना, देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग देगा,
वही तो कहा बंतर पूर्व कोठी में कुछ कम
नहीं, एक पेट भव में बांधे पिता घात किया और पिता अंतिम भव में बांधे,
तो घात करके कहाँ गया, मनुष्य में गया। उत्कृष्ट बांधी है, घात करेगा तो भी देव में तो जाना पड़ेगा कि नहीं
पड़ेगा।
वो चार घाती के लिए, आयु कर्म के लिए क्या होगा, देखो देखो उत्कृष्ट के लिए अंतर कितना होगा,
उत्कम अंतर कोटि पर,
उत्कृष्ट का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर वंतर पूर्व कोटि कुछ कम। ये समझ में आई बात, क्योंकि उसने देवायु बांधी है अप्रमत्त गुण स्थान वाले। अब आयु कर्म में अनुत्कृष्ट को लेना है, कोई भी आयु बांधी उसने, कोई भी आयु उसको अगर मनुष्य में ही रखना है तो मनुष्य आयु बांधी तो तीन पल्ले वाले लेना, यानी यहाँ वंतर पूर्व कोटि वहाँ तीन पल्ले, कुछ कम कर देना वो सब साधिक हो जाएगी, तो साधिक तीन पल्ले होते। हाँ, साधिक तीन पल्ले में वंतर पूर्व कोटि में कुछ कम हो ऐड कर देना।
तिर्यंचों का संबंध बता दिया ना, तो
इसीलिए उन्होंने तिर्यंचों के समान बताया। इतनी विशेषता है कि चार घाती कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक, अभी मनुष्य है तो मनुष्य में ग्यारहवा गुणस्थान भी है, तो अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख वहाँ तो तीरियन शो में कैसा किया था, दो समय लिया था, यहाँ तो ग्यारहवा गुणस्थान है इसलिए अंतर्मुख लिया। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, अब ये तो शपक में उसका उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट अनुभाग बंधक का अंतरकाल नहीं है, शपक में होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, वो ग्यारहवें गुणस्थान का काल एक समय हो या अंतर्मूर्त हो, इसका विशेषांक कल पढ़ेंगे, यानी ये भी रिवीजन हो जाएगी। चावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवानी मस्तकनम सदा देत हो।
नमोरियंतानम नमस्कृतानम नमो आर्यनम नमो उद्यानम नमो लोय सपत्तानम, नमोरियंतानम नमस्कृतानम नमो आर्यनम नमो उद्यानम नमो लोय सपत्तानम, नमोरियंतानम नमस्कृतानम नमो आर्यनम नमो उद्यानम नमो लोय सपत्तानम।